रात के लगभग 11 बज रहे थे। आशी एक टैक्सी में से उतरी। उसने खुद को छुपाने के लिए अपना चेहरा दुपट्टे से कवर कर रखा था। हमेशा से अलग उसने इंडियन ड्रेस पहना हुआ था। आशी ने टैक्सी से उतरते ही इधर उधर देखा। रास्ता सुनसान नजर आ रहा था। वो काफी सावधानी पूर्वक चलते हुए उस एरिया में बने एक पुराने छोटे से होटल के अंदर गए। तृप्ति ने उसे पहले ही रूम नंबर बता रखा था। रिसेप्शनिस्ट से बात करने के बाद आशी जल्दी से तृप्ति के बताए हुए कमरे में पहुंची। अंदर जाते ही उसने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। आशी ने अपना दुपट्टा निकालकर फेंका और तृप्ति की तरफ देखा। इतने सालों में उसके चेहरे में कुछ खास बदलाव नहीं आया था। आता भी कैसे, खुद को मेंटेन करने के लिए तृप्ति हमेशा महंगे कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट लेती थीं। इतने सालों बाद तृप्ति को अपने सामने देखकर जहां आशी के चेहरे पर कुछ खास भाव नहीं थे, वहीं तृप्ति उसे प्यार भरी नजरों से देख रही थी। तृप्ति ने आगे बढ़कर उसे गले लगाना चाहा, लेकिन आशी कुछ कदम पीछे हो गई थी। आपने ही कहा था कि मुझे ये भूलना होगा कि आप मेरी माँ हैं। आपने मेरे लिए जो भी किया, मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ। पर इस तरह आपका वापस आना मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ये आप अच्छे से जानती है ना, आशी ने सख्त आवाज में कहा। तृप्ति उसे भले ही कितना भी छुपाने की कोशिश करे, पर आशी को सच पता लग ही गया था। अपनी बेटी को सिंघानिया फैमिली में जगह देने के लिए तृप्ति ने उस घर की बेटी की जान छीन ली थी। हालांकि अभी तक वो इस बात से अनजान थे कि आशी जिंदा है। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए नहीं आई हूँ। जब तुमने बताया कि अभिमान राजवंश तुमसे शादी करने के बावजूद इस रिश्ते की जिम्मेदारी उठाने से पीछे हट रहा है, तो मैंने उसके बाप से बात करके उसे मजबूर किया। मैं बस तुम्हें यही बताना चाहती हूँ कि तुम्हें जल्द से जल्द अभिमान राजवंश के साथ सेटल होना ही होगा, तृप्ति बोली। हाँ ठीक है, लेकिन मेरा अभिमान के साथ सेटल होने में आपका क्या फ़ायदा है, आशी ने हैरानी से पूछा। वैसे भी तृप्ति जैसी औरत बिना अपने फ़ायदे के कोई काम नहीं करती थी। तृप्ति ने सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, इससे बड़ा फ़ायदा क्या हो सकता है। तृप्ति की बात सुनकर आशी जोर से हंसी, जैसे उसने कोई जोक सुना दिया हो। आशी ने कड़वाहट भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, ये बड़ी बड़ी बातें आप 6 साल की विहा के साथ करती थीं, तब वो यकीन कर सकती थीं, लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ। आप बिना वजह तो मुंबई वापस नहीं आई होंगी। आपने सिंघानिया फैमिली के साथ जो भी किया, उसके बाद वो आपको ढूंढ रहे हैं। ऐसे में आप उनके सामने आ गईं तो मेरी और आपकी दोनों की लाइफ बर्बाद हो सकती है। ऐसे में आप रिस्क तो बिल्कुल नहीं लेंगी। ऊपर से मेरे और अभिमान के साथ रहने पर भी जोर दे रही हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। सच सच बताइए, आपने क्या किया है इससे पहले कि आपकी की गई गड़बड़ मेरे सिर पर आ जाए। तृप्ति कुछ पल के लिए चुप हो गई थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हें अभिमान के साथ सेटल होने के लिए इसीलिए कह रही हूँ ताकि कल को तुम्हारी सच्चाई सामने भी आ जाए तो तुम्हारी लाइफ पर कोई इफेक्ट ना पड़े। फिर तुम सिंघानिया फैमिली से पूरी तरह अलग होकर राजवंश फैमिली से जुड़ जाओगी और वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और उनके सामने ये सच्चाई कौन लेकर आएगा? देखिए, बचपन में मैं आपकी सारी बात मानी थी। अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है मैं नहीं जानती, लेकिन मेरी लाइफ सॉर्टेड है और आप उसमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकती हैं, आशी हल्के गुस्से में बोली। भले ही अभिमान उसे ना अपना रहा हो, लेकिन आशी की जिंदगी सिंघानिया फैमिली में अच्छी खासी चल रही थी। अभिमान उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी नहीं भी बिताता तो सिंघानिया फैमिली उसे किसी चीज की कमी नहीं होने देती। लेकिन इस स्थिति में अगर आशी की तृप्ति की बेटी होने की सच्चाई सामने आ जाती है तो सच में उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। तृप्ति जिस तरह से बातें कर रही थी, आशी गुस्से में बौखला गई थी। देखो, मैंने तुम्हें इस बारे में कभी बताने का सोचा नहीं था, लेकिन सिंघानिया फैमिली की असली बेटी आशिका सिंघानिया जिंदा है और वो मुंबई पहुंच चुकी है। अगर गलती से भी वो सिंघानिया फैमिली के सामने आ गई और उन्हें सच पता चल गया तो, तृप्ति बोल रही थी। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि आशी गुस्से में जोर से चिल्लाई। तृप्ति जो बता रही थी उसका अंजाम बहुत बुरा था। आशी तो उस बारे में सोचना तक नहीं चाहती थी। उसने नामे सिर हिलाकर कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता है। यज्ञ तो कब से मौका ढूंढ रहा है मुझे उस घर से बाहर निकलने का। अगर उसे पता चला कि उसकी बहन जिंदा है तो वो फैमिली एक झटके में मुझे खुद से अलग कर देगी। आपने उस लड़की को मारा क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस लड़की को लेकर आप मुझे ब्लैकमेल करेंगी और मुझसे पैसे निकलवाएंगी? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं तुम्हें ब्लैकमेल करने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ, तृप्ति ने तेज आवाज में कहा। तो फिर आपने उस लड़की को क्यों जिंदा रखा? इतना सब कुछ करने के बाद भी आपको ये क्यों लगता है कि मैं आप पर यकीन करूंगी? आशी ने तेज सांसें लेते हुए कहा। मैंने सोचा था कि मैं उसे एक बुरी जिंदगी दूंगी। उसकी माँ ने मेरे साथ जो किया उसका बदला लूंगी। मैं सिंघानिया फैमिली की बहू होना डिजर्व करती थी, लेकिन मुझे गरीबी में जिंदगी बितानी पड़ी है। मैं बस उसका बदला उसकी बेटी से लेना चाहती थी, तृप्ति ने हड़बड़ाकर जवाब दिया। आशी ने अपना सिर पकड़ लिया था। उसे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि इतने सालों से तृप्ति इतनी बड़ी प्लानिंग कर रही थी। लेकिन वो लड़की कैसे बच सकती है? सबने यही कहा था कि वो पहाड़ी से गिरी थी और उसे अभिमान ने धक्का दिया था। पहाड़ी काफी ऊंची थी और नीचे दलदल था,
तो उसकी तो लाश तक नहीं मिली थी, ऐसे में वो जिंदा कैसे हो सकती है? कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रही हैं? आशी ने अविश्वास से कहा। उसे अभी भी तृप्ति की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। तृप्ति ने गहरी सांस ली और अपना मोबाइल निकालकर आशिका की तस्वीर दिखाई। उसकी आंखें बिल्कुल यज्ञ और आशुतोष की तरह थी, लेकिन बाकी के फेशियल फीचर अलग थे। उस दिन अभिमान ने आशिका को धक्का नहीं दिया था, उल्टा वो तो उसे बचा रहा था। मैं थी जिसने आशिका को धक्का दिया था। हाँ, नीचे गहरा दलदल था, पर उस लड़की की किस्मत अच्छी थी जो वो सीधे नीचे गिरने के बजाय नीचे किसी छोटी पहाड़ी पर गिरी थी। अभिमान काफी घबरा गया था। आशिका की गिरते ही वो सबको बुलाने के लिए चला गया और इस बीच मैंने उसे देख लिया था। मैंने कुछ आदमियों की मदद से आशिका को वहां से निकाल लिया था। ट्रॉमा होने और इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से उसे कुछ याद नहीं था और मैंने उसे यही कहा कि वो मेरी बेटी है, वो अभी भी मुझे अपनी माँ समझती है। तृप्ति ने आशी को सच बता दिया था। अगर वो आपको अपनी माँ समझती है तो फिर मुंबई क्यों आई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे सब याद आ गया हो? आशी ने तृप्ति को घूरते हुए पूछा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने एक माफिया डॉन स्काई से उस लड़की का सौदा किया था और उसके साथ उसकी शादी करवाना चाहती थी। वो एले से भाग गई और मुझे नहीं पता था कि वो भागकर मुंबई आएगी। मैं उसे ढूंढते ही यहाँ से वापस ले जाऊंगी। वैसे तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, बस मैं तुम्हें सतर्क करना चाहती हूँ। तृप्ति ने आशी को उससे मिलने का कारण बता दिया था। जैसे जैसे तृप्ति उसे सच बता रही थी, उसकी बातें सुनकर आशी को यकीन नहीं हो रहा था कि वो उसी की माँ है। वो दिल ही दिल में भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी कि उसे तृप्ति की परवरिश नहीं मिली थी।
इससे पहले कि तृप्ति कुछ और कहती, आशी ने सख्त आवाज में कहा, आगे से मुझसे मिलने के लिए मैसेज मत कीजिएगा। मुझे समझ नहीं आता आपको मेरा नंबर कैसे मिला। वैसे भी अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है। आप पकड़ी भी गईं तो मुझे इससे मतलब नहीं है। बेहतर होगा कि जल्दी से जल्दी उस लड़की को ढूंढकर आप यहाँ से निकल जाएं। जब मैंने सारे रिश्ते नाते तोड़ ही लिए हैं तो मेरी जिंदगी से दूर रहिए। आशी ने तृप्ति को कुछ बोलने का मौका तक नहीं दिया और वहां से निकल गई थी। तृप्ति उसे जाते हुए हैरानी से देख रही थी। उसे आशी के शब्दों पर यकीन नहीं हो रहा था। इसकी परवरिश तो काजल ने की थी, फिर इसके अंदर इतनी कड़वाहट क्यों है? मैंने इसके लिए इतना सब कुछ किया और ये अपनी ही माँ से नफरत करती है, तृप्ति ने भारी आवाज में कहा। तृप्ति भले ही काजल से कितनी भी नफरत करे, लेकिन वो जानती थी कि अगर उसकी बेटी की परवरिश काजल और आशुतोष ने की तो वो एक अच्छी इंसान बनेगी। लेकिन तृप्ति ये भूल गई थी कि परवरिश भले ही उन्होंने की हो, लेकिन आशी के कुछ साल उसी के साथ बीते थे। आज भी उनका असर उसके ऊपर था। न सिर्फ उसके दिल में तृप्ति को लेकर कड़वाहट थी, बल्कि वो उसी की तरह मतलबी थी, जो खुद की खुशी के लिए किसी को भी तकलीफ दे सकती थी। अस्पताल में नक्श इशिका से बात करके उसके कमरे से बाहर निकला था। जिस तरह से वो इशिका के सामने अच्छा होने का दिखावा कर रहा था, वो वैसा बिल्कुल नहीं था। ऊपर से साफ दिख रहा था कि वो इशिका की याददाश्त जाने का फायदा उठा रहा था। जैसे ही नक्श इशिका के कमरे से बाहर निकला, अभिमन्यु तुरंत उसके सामने आ गया था। अभिमन्यु ने सख्त आवाज में कहा, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे, मुझे अच्छे से समझ आ रहा था। नक्श अभिमन्यु को देखकर हल्का सा मुस्कुराया और जवाब में बोला, मैं बस उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मुझे गलत समझ रहे हैं चाचू। सही समझने की तुमने कोई वजह भी नहीं दी। अचानक यहाँ आने का कारण क्या है तुम्हारा? तुम तो हमेशा के लिए अब्रॉड सेटल हो चुके थे ना? जरूर किसी के जरिए पता चला होगा इशिका की याददाश्त चली गई है और मौके का फायदा उठाने के लिए आ गए, अभिमन्यु ने तंज भरे लहजे में कहा। मैं आपको कितनी भी सफाई क्यों न दे दूं, आप मुझे गलत ही समझोगे। इशिका की याददाश्त जाने के बारे में जब आप लोग बात कर रहे थे तभी मैं यहाँ पहुँचा था, तो मुझे पहले कैसे पता चल सकता है? मैंने टीवी में उसके एक्सीडेंट की न्यूज़ देखी थी और ख़ुद को रोक नहीं पाया। मेरा यकीन कीजिए चाचू, मैं बस उसे ठीक देखना चाहता हूँ। मैं आपकी हेल्प करूँगा ताकि उसके दिमाग में आपकी यादें लौट सके, नक्श ने सफाई में कहा। बोलते हुए उसने अभिमन्यु के कंधे पर हाथ रखना चाहा, लेकिन अभिमन्यु कुछ कदम पीछे हो गया था। एक बार के लिए मैं किसी अजनबी पर यकीन कर लूंगा, लेकिन राजवंश फैमिली के लोगों पर नहीं। वैसे भी उसे मेरी याद दिलाने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, अभिमन्यु ने पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब दिया। नक्श आगे कुछ नहीं बोला। उसके चुप होने पर अभिमन्यु ने पूछा, जैसा कि तुमने कहा कि तुम्हें उसके एक्सीडेंट के बारे में पता चला और तुम उसका हालचाल पूछने आ गए, अब उसे देख लिया है तो तुम्हारे यहाँ रुकने का कोई रीजन नहीं बनता है, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। पर उसे मेरे अलावा और कोई याद नहीं है, ऐसे हाल में मैं उसे अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ, नक्श बोला। अभिमन्यु के चेहरे पर कड़वाहट भरी मुस्कुराहट थी। उसने कहा, थोड़ी देर पहले तुम पूछ रहे थे ना कि मुझे तुम पर यकीन क्यों नहीं है। लो, तुमने खुद ही साबित कर दिया, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, फिर भी तुम यहाँ पर रुक रहे हो। आपको जो समझना है आप समझ सकते हैं। मुझे लगता है कि मेरा यहाँ रुकना ही सही होगा। इशिका मालविका और आशा के बारे में पूछेगी। मिसेस सिंघानिया के बारे में उसे कुछ याद नहीं है, आपको वो भूल चुकी है। ऐसे में मैं इकलौता शख्स हूँ जिसे वो जानती है, नक्श ने सख्त आवाज में जवाब दिया। नक्श का कहना भी सही था, इशिका की याददाश्त जा चुकी थी और ऐसे में नक्श इकलौता शख्स था जो उसे याद था। जैसे ही नक्श की बात खत्म हुई, एक तेज आवाज वहां कॉरिडोर में गूंजी। और तुम्हें ये गलतफहमी क्यों है कि तुम इकलौते शख्स हो जो इशिका को याद है? देखा जाए तो तुमसे कहीं ज्यादा भरोसा वो मुझ पर करती है। नक्श ने तुरंत पीछे पलट कर देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया था, वहीं अभिमन्यु के चेहरे पर सुकून भरे भाव के। सामने मौजूद शख्स के होते हुए नक्श तो क्या, खुद अभिमन्यु तक इशिका के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता था।